ओम शांति, ओम शांति। आज मेरा सौभाग्य है मधुबन में मंदा दीदी के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन करने का चांस मिला। मंदा दीदी को आप सब तो जानते ही होंगे। 26 इयर्स से डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल रिट्रीट सेंटर ऑक्सफोर्ड, 40 सालों से आप यूके में अपनी सुंदर सेवाएं दे रही हैं। हम डाइनिंग में तो मिलते थे, पर थोड़ा और जानने का आज चांस मिला। ओम शांति दीदी।
ओम शांति शिल्पा बेन।
थोड़ा आपको जानने का चांस मिला दीदी। बाबा के साथ आपका कोई ऐसा अनुभव जो आपके दिल के बहुत करीब हो, ऐसा अनुभव जो बाबा को, आपको बाबा के समीप लाया हो।
थैंक यू, थैंक यू। आपने परिचय भी दिया शिल्पा बेन, आपने अपना परिचय तो नहीं दिया, आप कौन हो? शिल्पा बेन, पता नहीं आप कितने साल हुए आपको ज्ञान में?
6 to 7 years.
6-7 साल। हम जब आए मधुबन ईश्वरी तो शिल्पा बेन को देखते थे, तो वैसे हमको लगा कि कुछ विशेष आत्मा है। तो फिर उस दिन हम उनके घर में भी गए, तो उनका अच्छा बाबा ने उनको स्थान दिया है, और लास्ट तो फास्ट जाने वाली आत्मा है।
थैंक यू।
और आपका प्रश्न, वैसे तो कई अनुभव हैं, लेकिन एक विशेष अनुभव मुझे याद आता है। मुझे याद है 1991 का साल था और जनवरी मास था, और उस साल में दादी जी की तबीयत, दादी जानकी की तबीयत बहुत खराब थी, और दादी अहमदाबाद में थी, बिल्कुल दादी शरीर छोड़ने की तैयारी कर रही थी, ऐसी दादी की तबीयत थी। और दादी ने अपनी सब कुछ चीजें भी किसी न किसी को दे दी, ऐसे था। लेकिन उन दिनों में दादी टेलेक्स द्वारा संदेश भेजती थी हमको, लंदन में सबको, क्लास को, तो ऐसे संदेश आते थे। और मैंने कुछ खास विशेष नहीं समझा कि मेरे को उसका कोई रिस्पांस देना है, तो मैंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर दादी का संदेश आया कि मंदा मेरे टेक्स्ट मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं देती है। बस इतना ही दादी ने कहा, तो मेरे को बहुत आया कि मेरे को मधुबन में जाना है, मेरे को दादी को मिलना है, और मुझे 18 जनवरी को ही मधुबन में जाना है। और ये थी 15 तारीख संडे था, मुझे अभी तक याद है। 16 तारीख एक दिन में वीजा लिया, 17 तारीख को निकलना हुआ। लेकिन उस समय कारोबार भी ऐसा चल रहा था, ग्लोबल कॉरपोरेशन हाउस, जो बाबा का पहला अपना डेडिकेटेड स्थान जो बन रहा था, तो कारोबार बहुत चल रही थी उसकी, तो निकलना भी मुश्किल था। तो मैं बाबा के सामने बैठूं कि बाबा मुझे ऐसे संकल्प आया है, बाबा के कमरे में मुझे ये संकल्प आया है और मुझे जाना है, बाबा के सामने बैठूं तो ऐसे मुझे जवाब मिले बाबा से, हाँ जाओ और जरूर जाओ, जाना चाहिए। फिर बाबा से मैं दूसरे कमरे में जाती थी तो मेरे संकल्प चलने लगते थे, कैसे जा सकते हैं, इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा कारोबार है, फिर कौन करेगा, ये सब ऐसे बुद्धि चलने लगती थी, तो कोई और संकल्प आते थे। एनीवे, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने संकल्प किया कि आना है, और जयंती बहन ने भी तुरंत छुट्टी दे दी। जब से मैंने संकल्प किया मुझे आना है, उस घड़ी से मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि एक एक घड़ी, एक एक संकल्प में बाबा मेरे साथ हैं। और उस यात्रा में, घर से निकल के मधुबन पहुंचने में जो भी विघ्न आने वाले थे, आ सकते थे, वो सब विघ्न आए। मैं एयरपोर्ट गई तो इट वॉज द गल्फ वो शुरू हुआ, तो उसमें बहुत ही सिक्योरिटी हो गई, 2-4 बारी मेरे को प्रॉब्लम हुआ, ये नहीं है वो नहीं है, फाइनली दिल्ली पहुंचे, फ्लाइट की बुकिंग नहीं है, फिर फ्लाइट मिली, फ्लाइट में बैठने के बाद 4 घंटे तक फ्लाइट चली नहीं, बहुत बारिश थी और बहुत फॉगी थी। अहमदाबाद पहुंचे तो हमारी जो ट्रेन थी वो मिस हो गई, रात की ट्रेन ली। एनीवे, जो भी होना था तो हुआ, लेकिन मुझे एक सेकंड के लिए भी संकल्प नहीं आया कि मुझे नहीं आना था। और ही मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि बाबा मेरे साथ हैं। और लास्ट में वो भी हुआ कि हम नीचे आबू रोड से मधुबन के भाई अपनी गाड़ी में, बाबा की गाड़ी में मेरे को लेने आए ट्रेन स्टेशन पर। तो ऊपर आते समय किसी ने हमारी जीप पर पत्थर डाला। उन दिनों में आदिवासी लोग जीप को, गाड़ियों को रोकते थे और लूटते थे। तो मधुबन वाले भाई थे तो उनको तो सब कुछ, मधुबन वाले भाई बहुत होशियार, हर बात में बहुत होशियार। एनीवे, तो उन्होंने हमारे जीप पर पत्थर डाला, तो मैं आगे बैठी थी तो कांच सारा टूट गया। मेरे चेहरे पर, लेफ्ट साइड पर बहुत सारे कांच गए और यहां से कांच का पीस बाहर से अंदर आया और खून बहने लगा। मुझे पता नहीं चला उस समय क्या हो रहा है, कहां से खून बह रहा है, कैसे बह रहा है, लेकिन मेरा मुंह खून से भर रहा था। अंदर मुझे पता चल रहा था कि मेरे मुंह में खून है ऐसे। एनीवे, उत्तम भाई थे गाड़ी चलाने वाले, उन्होंने तो फटाफट गाड़ी चलाई, रोकी नहीं गाड़ी, पुलिस स्टेशन पर रुके। मैंने कहा भाई जल्दी चलो अभी ऊपर जाके, फिर डिस्पेंसरी में जाके। एनीवे, ये सब हुआ, मेरा होठ इतना बड़ा हो गया, सब मधुबन वाले हंसते थे और मजाक करते थे, लेकिन मुझे हर घड़ी, और उस समय मैं 10 दिन मधुबन में रही, एक एक सेकंड को मुझे ऐसे लगता था बाबा मुझे इशारा कर रहे हैं, यहां जाओ, वहां जाओ, उसके पास जाओ, ये करो, वो करो। वो जो अनुभव रहा 10 दिन का मेरा, मैं कभी भूल नहीं सकती हूं। और उससे जो भगवान के साथ हमारा बॉन्ड, इंग्लिश में कहेंगे, इन हिंदी आई थिंक यू कुड से बंधन जो है, आत्मा और परमात्मा का जो आपस में बंधन है, वो बंधन ऐसा छूट गया, वो अनुभव आज तक मैं समझती हूँ मेरी पालना कर रहा है, मुझे और ही बाबा के नजदीक आने में मदद करते हैं। कभी कभी कुछ भूल जाते हैं, लेकिन वो अनुभव मैं याद करूं तो मुझे तुरंत ही याद आता है, हाँ ये मेरा जो संबंध बाबा के साथ है वो कभी टूट नहीं सकता है, न कभी भूल सकता है। तो आपने कहा नजदीक का संबंध, सो उस दिन से, उस समय से, जैसे कि मेरा संबंध ही बाबा के साथ इतना गहरा हो गया जो कभी टूट नहीं सकता है। मैं समझती हूँ वो संबंध सारा चक्र मेरे को बाबा के साथ नजदीक रखेगा, और वो ही जो सारा चक्र बाबा के साथ संबंध नजदीक का रहा, वही संबंध मुझे बाबा के पास वापस ले आया।
बहुत ही सुंदर, विपरीत परिस्थितियों को भी पार किया आपने, तो ऐसा कहेंगे दादी जानकी निमित्त बनी।
कह सकते हैं, दादी ने बुलाया और मैं खींच के आ गई।
दीदी, दादी जानकी के साथ भी आप बहुत समय रहे हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका दादी के साथ जो बहुत स्पेशल हो?
पिछले 10 सालों से मैं कहूंगी, मुझे याद है एक बारी मैंने दादी को पत्र लिखा और ऐसे ही अपने मन की बात, अवस्था की बात कुछ मैं सुना रही थी। दूसरे दिन हंसा बेन ने मेरे को फोन किया, दादी तुमको अभी अभी मधुबन बोल रहे हैं आज। मैं लंदन में थी या नहीं थी, दादी मधुबन में थी, दादी हंसा बेन का फोन आया अमृत वेले के पहले, कहती है दादी तुमको कहती है तुम आज ही मधुबन आओ। मैंने कहा आज ही मधुबन कैसे हो सकता है, आज ही? कहती है दादी कहती है आज ही आओ। मैंने कहा ठीक है। मैं अमृत वेले गई, अमृत वेले के बाद दोबारा हंसा बहन का फोन आया, आप आ रही हो? मैंने कहा मैंने सोचा नहीं। फिर मैं क्लास में गई, मुझे याद है अभी तक क्लास में गई तो ये संकल्प अपने आप को, ये प्रश्न अपने आप को पूछ के मैं गई, क्या करूं, जाऊं या नहीं, उसी दिन फ्लाइट लेना, जाऊं या नहीं। फिर बाबा के सामने मैं बैठी भोग लगाने, तो मुझे ऐसे भासना आई, मैंने अपने आप से ये बताया अगर मैं पिछले कल्प गई होंगी ना तो इस कल्प भी जाऊंगी। लेकिन मैं योग में बैठी भोग लगाने बाबा के सामने बैठी तो मुझे बिल्कुल भासना आई कि तुम गई थी और तुम जाओ। तो मैं निकल गई उसी दिन की फ्लाइट, 10 बजे 11 बजे की फ्लाइट लेकर मैं आ गई मधुबन। जब मैं मधुबन पहुंची तो हंसाबेन कहती है फोन चलता रहे, कब आ रही हो, कब पहुंच रही हो, दादी इंतजार करके बैठी हैं। और जब मैं शक्ति भवन के दरवाजे पर आई तो दादी फूलों की थाली लेकर खड़ी थी, एकदम छोटी सी थाली, लेकिन दादी फूलों की थाली लेकर खड़ी थी स्वागत करने के लिए। आप समझो इतनी बड़ी दादी और फूलों की थाली से स्वागत करने के लिए खड़ी।
ब्यूटिफुल,
बहुत ही सुंदर। और जब भी मैं दादी से दृष्टि लूं तो मेरी आंख भर आती है। ये आंख इसलिए भर आती है, प्यार से भर आती है, क्योंकि दादी की दृष्टि कुछ ऐसी आत्मा पर ऐसी टच करती है जहां कोई और नहीं जा सकता है। इस स्थान, इस प्यार, इसने कुछ भी कहो, वो दृष्टि जहां पहुंचती है वहां कोई नहीं जा सकता है। और कोई जिंदगी में नहीं गया है, इस जिंदगी में तो कोई नहीं गया है। इसलिए दादी का एक अनुभव नहीं, एवरी टाइम, हर घड़ी मैं दादी को मिलती थी तो मुझे ये अनुभव होता था। और अभी अभी दादी का भोग था ना 27 तारीख को, तो जैसे कि दादी आई रुक्मणी बहन में, तो मैं भी मैं नहीं जाने वाली थी, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं कि भीड़ में सब जाए तो मैं भी चल पड़ूं, ऐसे नहीं। फिर भी बहुतों ने कहा जाओ जाओ जाओ, तो मैं गई। तो मुझे वो अनुभव, कईयों ने कहा तुम्हारा क्या अनुभव था, दादी थी क्या, मैंने कहा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मुझे जरूर है कि वो जो अनुभव दादी का मेरे मेरे पास है दृष्टि का, कि वो दृष्टि मेरी, जिससे मेरी दिल भर आती है, वो दृष्टि मुझे याद आई उस घड़ी। और कईयों ने विदेश से मेरे को ईमेल भेजे कि जैसे और तुमको दादी मिली ऐसे औरों को नहीं मिली दादी, या तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए क्योंकि मैंने ये भी किया, ऐसे ऐसे किया। तो कईयों ने देखा तो क्या क्या हुआ, तुम्हारी आंखें भर आई। मैंने कहा यही कि जो दादी की दृष्टि के से अनुभव था वो उस घड़ी वो अनुभव जैसे इमर्ज हो गया।
बहुत ही फॉर्चुनेट रहे हो आप, बाबा के लकी स्टार।
डेफिनेटली बिल्कुल,
बाबा के सबसे फेवरेट चाइल्ड्स के साथ रहे हैं आप, एंड वंडरफुल अनुभव।
अव्यक्त बाप दादा ने, मेरे को याद है अव्यक्त बाप दादा ओम शांति भवन में आते थे ना, तो हम बिल्कुल सामने बैठते थे स्टेज के सामने, तो और टर्न होता था तो मुझे पता था कि इस बारी हमारा टर्न है बाबा से पर्सनल मुलाकात करने का। तो मेरे को संकल्प आया उस समय कि बाबा मुझे वरदान दे कि मैं विशेष आत्मा हूं, ऐसे संकल्प आया। बस ऐसे ही, फिर तो छोड़ दिया और कुछ नहीं, ऐसा ही संकल्प था। फिर जब मेरी मीटिंग बाबा के सामने, पर्सनल मीटिंग का समय आया, बाबा के सामने बैठी, बहुत कुछ बातें बाबा ने बताई, फिर फाइनली बाबा ने कहा तुम विशेष आत्माओं के साथ रहने वाली विशेष आत्मा, उनकी विशेषताओं को धारण कर विशेष बन ही जाएंगी।
वंडरफुल।
तो प्रश्न मेरा था, लेकिन बाबा बहुत होशियार है, बाबा ने ये नहीं कहा विशेष हो, बाबा ने कहा बन जाएगी विशेष आत्माओं के साथ रहकर। तो हाँ, दादियों के साथ रहने का हमको बहुत ही मौका मिला।
बहुत ही सुंदर दीदी। मुरलियों से कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप उनका स्पष्टीकरण करेंगे तो। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त हो जाता है तब अंधेरा होता है, सूर्यास्त ही नहीं हो तो अंधेरा कैसे आवे। इसी तरह स्मृति का सूर्य सदा कायम रहे तो अंधेरा आ नहीं सकता। अब क्वेश्चन ये है, ये स्मृति का सूर्य सदा कायम कैसे रखें?
ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और जो भी बाबा ने हमें पुरुषार्थ के लिए तरीके दिए हैं पुरुषार्थ के लिए, जो हमको प्रेरणाएं दी हैं, वो प्रेरणाएं हमको याद रखनी होगी। उसमें सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि स्मृति बनाने के लिए हमको ज्ञान स्नान रोज करना है। लेकिन ऐसे ही नहीं चलो मुरली सुन ली और ज्ञान स्नान हो गया, लेकिन जितनी जितनी ज्ञान की बातें हमारी स्मृति में रहेंगी तो वो स्मृति से हमारी आत्मिक स्थिति बनी रहती है। अगर हम सूर्य उदय होने की बात करते हैं, सूर्यास्त की बात करते हैं, जब हमारे में देह अभिमान आ गया तो त्रेता युग के अंत से कहेंगे कि सूर्यास्त आना शुरू हो गया, हमारी स्मृति बदल गई। हम जो थे आत्म अभिमानी थे, हम देवता थे, वो जो हमारी स्मृति है वो स्मृति हम भूल गए और भूल गए देह अभिमान में आ गए। देह अभिमान में आ गए तो विकारों ने गहराव कर लिया, तो और ही वो गहराव से और ही अंधियारा स्मृति पर लग गया। तो उस अंधियारे से बाहर जाने के लिए हमको ये याद भी रखना होगा हम कौन हैं। हम आत्मा हैं, परमात्मा की संतान हैं, लेकिन ये बुद्धि से याद करने की बात नहीं है। बुद्धि से हमें ज्ञान मिलता है, बुद्धि से हमें समझ मिलती है, लेकिन इस समझ को यूज करना माना हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी कृति, हमारे बोल, हमारे चाल, हम उस सब में आत्मिक स्थिति को की स्मृति बना के रखना। वो तब बने की रहेंगी जब हम अनुभव करते हैं, जब ये ज्ञान हमारा बुद्धि से दिल तक जाता है, स्मृति से स्वरूप में आता है, तब हमको याद करने की बात नहीं है। फिर वो स्मृति में तुरंत ही हमें चले जाना है। अभी भी जैसे मुझे याद आता है, शुरू शुरू में जब मैं ज्ञान लिया तो ये सुनते थे ना कि आत्मा एक ज्योति बिंदु है, आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है। तो मुझे याद है कि मुझे वो अनुभव ही नहीं हो रहा था, मैं बैठू योग में अनुभव ही न होए। तो मैंने सुदेश दीदी को पूछा, मुझे अनुभव कराओ, आत्मिक स्थिति का अनुभव कराओ। तो हम लोग, मुझे याद है, डाइनिंग टेबल पर बैठे, मैं यहाँ बैठी, सुदेश दीदी वहां बैठी, उन्होंने दृष्टि दी और मेडिटेशन कॉमेंट्री शुरू की। और वो तो सुदेश दीदी की तो वो तो नशे में चली जाती हैं, योग कराती हैं, तो वो तो चली गई, बिल्कुल कमेंट्री करा के चली रहो, मैं तो बैठी रहो, मैं अपने क्या हुआ पता नहीं। एनीवे, उसके बाद मेरा यहाँ मधुबन आना हुआ। मुझे अभी भी याद है, रास्ते में भी पूछती रही, जो पुराने थे सब उनको भी पूछती रही।
मधुबन के जीत के अंदर आके मधुबन के भाई बहनों को मिलते ही मुझे तुरंत जैसे अनुभव करना या स्मृति आई कि आत्मानी स्थिति क्या है। क्यों? क्योंकि उसमें सभी करने की जरूरत, ये सभी हटाने की बात नहीं थी, लेकिन जो फीलिंग्स आई, मधुबन में सब पुराने थे, अभी सब पुराने 40-50 साल वाले पुराने थे, उसमें उन्होंने से वहां से जैसे कि ये अपने तरीके का रहना, अभी आई है, छोटी है, कुमारी है, दही है, कुछ भी, ये हमारी बहन है, ये मेरे भाई है। ये स्मृति ऐसे जैसे लगी कि उसमें और कोई स्मृति की बातें नहीं थी, कभी हमारी स्थिति माना कोई बैलेंस नहीं, कोई मैं तुम ये वो ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं। तो ऐसी स्मृति हमारी तब रहती है जब हमारा अंदर से अभ्यास रहता है, बाबा के सामने बैठ के अंदर से अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा शरीर से अलग, ये भी आत्मा शरीर से अलग। ये स्मृति इतनी है ताकि और उसकी फीलिंग्स क्या है। उसकी फीलिंग्स नेचुरली दिल की कहो या जो स्थूल बातें हैं उसमें दिल कम जाएगा, उसके उसमें ध्यान कम जाएगा, ध्यान नहीं जाएगा तो बोले क्या करूंगा। बाबा जी का बच्चों को पहले से बता दिया है कि प्रकृति अपना खेल करती है और करती रहेगी। हम सभी जो सुन रहे हैं चारों तरफ से एक बहुत बड़ा साइक्लोन दो दिन से कहाँ कहाँ घूम रहा है, वहाँ मिल गया, पहले केरल में गया, केरल से फिर महाराष्ट्र में आया, बॉम्बे आया, बॉम्बे के बाद गोवा, फिर गुजरात, पर उसने गुजरात का मतलब नहीं बारिश किया बहुत कुछ हुआ। अभी प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट थी आज रात को राजस्थान में एंट्री कर रहा है, तो इसके कारण हो सकता है माउंट आबू के साथ भी हो, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। तो रात को काफी तूफान भी आ सकता है, तूफान में से कई गिरेगा, बिजली गिरेगी, बिजली बंद हो जाएगी, तो इसके लिए क्या करना है इस सब को अपने मोबाइल के अंदर बंद करने हैं। और टीवी का स्विच या जिसके पास टीवी है या कोई ऐसे कंप्यूटर के स्विच वो सब बंद करके रखना है, नहीं तो ये सब खराब हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, इसलिए आपको बता रहे हैं। ताकि दोबारा के बच्चे सब सेफ है और अपने आप को शक्तिशाली बना के चल रहे हैं और शांत। जैसा कि अभी तक मैंने बताया साइक्लोन, हम देखते हैं साइक्लोन, अर्थक्वेक, फ्लड्स, अभी तो बारिश हो रही है जबकि मौसम भी नहीं है, बिन मौसम का साथ बहुत साधारण बात नहीं है हमारे लिए, परिवर्तन ये कौन सा समय चल रहा है। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया हुआ है एडवांस में कि ये सब होगा, अनसर्टेनिटी यानी कि कोई भी बात का विश्वास नहीं, कोई भी बाहर की स्थूल चाहे मौसम है या स्थूल है या मनुष्य है कि पॉलिटिक्स है या गवर्नमेंट है या साइंस है, किसी पर भी आज तक हम विश्वास नहीं कर सकते क्या होने वाला है। तो ये सब हमें इशारा दे रहे हैं कि हमें क्या करना है। बाहर की बातें जितनी अनसर्टन होती जाती है उतना ही हमें अंदर से सर्टेनिटी होनी चाहिए। क्या सर्टेनिटी कि अभी अंतिम समय है, अभी कलयुग का अंत आने वाला है, हम बाबा के बच्चों के लिए संगम का समय है, हमें घर जाने का समय है, हमें अभी इसी बात पर ध्यान देकर चलना है कि जितना हो सके हर बात से अपने आप को लड़ा करके जो भी बात इनको खींचने वाली है, बुद्धि को रोचने लाने वाली है, ये सब बातें अभी साइक्लोन है, क्या कर सकते हैं। कोई यहाँ बैठे सारा दिन का मौसम भी आपने देखा, कुछ नहीं कर सकता है कोई, और हमें क्यों क्या के प्रश्न में नहीं जाना है, और अपने आप को धैर्य बनाकर आत्म अभिमान स्थिति बना के बाबा के याद में इतना व्यस्त रहना है कि वो ही शक्ति हमें भी चलाए और इस वातावरण को भी शक्ति देने। ये समय है, अभी ये समय है आत्मा और परमात्मा और कुछ नहीं, सिर्फ आत्मा और परमात्मा। बाबा ने बोली में कहा है तुम बच्चों की ये ईश्वरीय रील्स है, जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नजर दस दिन खाते जाएंगे। तो दीदी हम ये कौन सी रील्स की बात कर रहे हैं, रील्स है इसे बताने की, रील्स है कहा की करने की,
जिससे हमारे अंदर श्रुति का कुंड बन जाता है,
हम योग लगा रहे हैं जो शांति का सागर है, अभिज्ञता का सागर है। इस हस्ती से ऐसी हस्ती से हम योग लगा रहे हैं, तो ऐसी हस्ती से आप यहाँ भी ऐसी पर्सनैलिटी के, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी के साथ बैठे हुए, तो उसकी असर आपके ऊपर होगी। और हम रोज बाबा को ऐसे याद करते हैं, ऐसी बड़ी हस्ती, पवित्रता के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर के साथ हम बैठते हैं, तो वो जिससे हम कुछ नहीं आए कि हमारे अंदर बढ़ता जाना है। ऐसे बढ़ता जाना है तो जैसे अंदर बढ़ता जाना है, सिर्फ ऐसे ही सोचना है कि दिमाग भी बढ़ता जाता है, लेकिन दिल और दिमाग और शरीर सब ऐसा बढ़ता जा रहा है, तो जैसे एक स्तंभ हम बन रहे हैं, शांति के स्तंभ, शक्ति के स्तंभ हम बन रहे हैं, जिससे वो एनर्जी अपने आप काम करती है। सबसे पहले तो यहाँ अभी काम करती है, और इससे शक्ति के लिए परिवर्तन, इस दुनिया का परिवर्तन, इस प्रकृति का परिवर्तन होता है, और परिवर्तन हमको पता नहीं चलता है, लेकिन एकदम सूक्ष्म परिवर्तन चलता है। थैंक यू सो मच दीदी, वंडरफुल, थैंक यू फॉर आस्किंग ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच, ओम शांति।